ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह करो नष्टदृशामेष पुराण अर्क अधुनावदितः। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्रीमद् भागवत से पाठ पंचम स्कंध अध्याय 5 भगवान सहदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। इस अध्याय के 26 नंबर श्लोक। सर्वाणी मध्यस्नातया भवब्धि चराणि भूतानि सुतः ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वह विविक्तदृग्भिः तत् ह अर्हणम् मे सर्वाणि मध्यस्नातया भवब्धि चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदृग्भिस्तदुहारणं मे सर्वाणि मध्यस्नातया भवब्धि चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदेभ्यो विविक्तदृग्भिस्तदुहारणं मे सर्वाणि मध्यस्नातया भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदेभ्यो विविक्तदृग्भिस्तदुर्हरणं मे। शब्दार्थ सर्वाणि समस्त मध्यस्नातया मेरा आसन होने के कारण भवब्धि तुम्हारे द्वारा चराणि चर भूतानि जीवात्माएं सुता हे पुत्रों ध्रुवाणी अचर संभावितव्यानी आदरणीय पदे पदे पग पग पर प्रतिक्षण वह तुम लोगों के द्वारा विविक्त दृग्भिः स्पष्ट दृष्टि तथा ज्ञान से युक्त परमात्मा रूप में भगवान सर्वव्यापी है। तत् ओम अप्रत्यक्षतः जो ह निश्चय ही अर्हणम आदर देते हुए मैं मुझे अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद हे पुत्रों तुमने चराचर किसी जीवात्मा से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए यह जानते हुए कि मैं उनमें स्थित हूं प्रत्येक क्षण उनका समादर करना चाहिए इस प्रकार तुम मेरा आदर करो। कृपया दोहराइए हे पुत्रों तुम्हें चराचर किसी जीवात्मा से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए यह जानते हुए कि मैं उनमें स्थित हूं प्रत्येक क्षण उनका समादर करना चाहिए इस प्रकार तुम मेरा आदर करो। तात्पर्य इस श्लोक में विविक्त दृग भी अर्थात ईर्ष्या रहित शब्द का प्रयोग हुआ है। सभी जीवात्माओं में भगवान का वास परमात्मा रूप में होता है जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है अंडांतरस्थं परमाणु चयांतरस्थं। इस ब्रह्मांड में भगवान गर्भदोकशायी विष्णु तथा क्षीरदोकशायी विष्णु के रूप में स्थित है वे प्रत्येक परमाणु में व्याप्त है। वेदों का कथन है ईशाभाष्यम इदम सर्वम परमेश्वर सर्वत्र स्थित है और जहां कहीं भी स्थित है वह उनका मंदिर है। हम दूर से भी मंदिर को प्रणाम करते हैं इसी प्रकार से समस्त जीवों को प्रणाम किया जाना चाहिए यह उस विश्व देवतावाद का सिद्धांत से भिन्न है जो प्रत्येक वस्तु को ईश्वर मानता है। ईश्वर से प्रत्येक वस्तु का संबंध है क्योंकि वे सर्व व्यापक है। हमें दरिद्र नारायण के मूर्ख उपासकों की भांति उच्च नीचे में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। नारायण तो धनी तथा निर्धन दोनों में विद्यमान है। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि नारायण केवल दरिद्र व निर्धनों में वास करते हैं वे सर्वत्र है। परम भक्त प्रत्येक प्राणी को चाहे वह कुत्ता या बिल्ली क्यों न हो सम्मान प्रदान करता है। भगवद गीता की पांचम अध्याय के 18 नंबर श्लोक में कथन है विद्या विनय संपर्णे ब्राह्मणे गृहस्थिनी सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिनः। यथार्थ से विनीत साधु विद्या तथा विनय युक्त ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता और चंडाल कुत्ता भक्त को भी समान दृष्टि से देखता है। इस समदर्शिनः शब्द से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि जीव तथा ईश्वर एक समान है वे सदैव पृथक पृथक है। प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर से भिन्न है अतः विविक्त दृक् समदृक् के आधार पर दोनों को एक समान समझना भूल होगी। भगवान भले ही सर्वत्र रहना स्वीकार करें किंतु उनका पद बड़ा है। श्रील माधवाचार्य पद्म पुराण से उदाहरण देते हुए कहते हैं विविक्त दृष्टि जीवानं धिष्ण्यातया परमेश्वरस्य भेद दृष्टि ही जिसकी दृष्टि विमल है और जो ईर्ष्या रहित है उसे ईश्वर प्रत्येक जीवात्मा में स्थित रहकर भी समस्त जीवात्माओं से पृथक देखता है। वे पद्म पुराण में और आगे से भी उदाहरण देते हैं उपपादयेत परात्मनं जीवेभ्यो यो पदे पदे भेदे नैव न चैतस्मात् प्रियो विष्णोस्तु कश्चन। जो जीवात्मा तथा परमेश्वर को पृथक पृथक देखता है वह उसे परम प्रिय होता है। पद्म पुराण में ही कहा गया है यो हरेश्चैव जीवानं भेदवत्ता हरे प्रियः। जो वह उपदेश देता है कि जीवात्मा परमेश्वर से पृथक है वह भगवान विष्णु को परम प्रिय होता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सह गण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सह गण ललिता श्री विशाखानितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाणि मध्यस्न्यतया भवब्धि चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्त दृग्भीष्ट दुर्हारणं मे। हे पुत्रों, तुम्हें चराचर किसी जीवात्मा से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, यह जानते हुए कि मैं उनमें स्थित हूं, प्रत्येक क्षण उनका समादर करना चाहिए। इस प्रकार तुम मेरा आदर करो। तो भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को जो उपदेश दी गई, जिसमें उनके बड़े पुत्र भरत महाराज भी शामिल थे, तो ये उपदेश भागवत में बड़े प्रसिद्ध हैं और विशेष रूप में वैष्णवों के लिए भक्तों के लिए बड़ी उपादेय हैं। तो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि भगवान ऋषभदेव ने कहे थे कि विशेष रूप में वो ब्राह्मणों की प्रिय है। ब्राह्मण मुझसे भौतिक सुख की कामना नहीं करते, वो अत्यंत पवित्र तथा निस्पृह है, वे एकमात्र मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। इसलिए ऋषभदेव के प्राय सभी पुत्र ब्राह्मण गुण से युक्त थे, इसलिए भगवान को प्रिय थे। लेकिन इस श्लोक में आगे उन्होंने कहते कि प्रत्येक केवल ब्राह्मण उनको प्रिय नहीं है, वो प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भी निवास करते हैं। इस श्लोक के ऊपर अपने भाष्य लिखते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि तद्देव ब्राह्मण सम्मानं विधाय दानि सर्वभूत सम्मानं विधते सर्वाणि इति हे सुता सर्वाणि जंगमानि स्थावराणि च भूतानि मद अधिष्ठानतया वजुष्माभिः सम्माननीयानि। कि तद्देव ब्राह्मणं सम्मानं, पिछले श्लोकों के साथ ये जुड़ा हुआ है। इन पिछले श्लोक में उन्होंने ब्राह्मणों की विशेष महत्ता को बताने के बाद इस श्लोक में कहते कि केवल ब्राह्मण तो निश्चित रूप में भगवान को प्रिय है और सम्मानीय है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि अन्य जीवों को सम्मान नहीं देना। ब्राह्मण सम्मानं विधेदानि, लेकिन फिर भी सर्वभूत सम्मानं विधते। हाँ, ब्राह्मण को सम्मान देने के साथ साथ हम प्रत्येक जीवात्मा प्रत्येक शरीरधारी जीवात्मा को सभी को सम्मान करना चाहिए। सर्वाणी सर्वाणी इति हेसुता सर्वाणी जंगमानी स्थावराणी स्थावर जंगम सर्वत्र मेरा अधिष्ठान है। भूतानी मद अधिष्ठानी तया सर्वत्र मेरे अधिष्ठान है, भगवान के अधिष्ठान है। इसलिए जुष्मा भी सम्मानी सम्माननी यानी इसलिए सभी को सम्मान प्रदान करना। केवल ब्राह्मण तो सम्मानीय है, भगवान को अति प्रिय है ब्राह्मण, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहते कि सिद्धर स्वामी कहते कि ये ऋषभदेव ये भी कहना चाहते कि ब्राह्मण को सम्मान देने के साथ साथ सब प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करने वाली परमात्मा की अधिष्ठान रूप सभी जीवात्मा को भी सम्मान करना चाहिए, भगवान को सम्मान करना चाहिए और उनके अंश स्वरूप जीवात्मा को प्रत्येक जीवात्मा को सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी शरीर में हो, कुत्ता के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, वृक्ष के शरीर में, यहां तक कि पत्थर भी। स्थावर जंगम है, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव स्मृति। जो उत्तम वैष्णव होते हैं ये सर्वत्र अपने भगवान इष्ट को दर्शन करते हैं, इसलिए सर्वत्र सभी स्थिति में प्रत्येक वस्तु को सम्मान करते हैं। जो दूसरों को सम्मान नहीं करेगा तभी वो ईर्ष्यालु बनेगा। हाँ, हम जो दूसरे को सम्मान नहीं करने का अर्थ हम उसको ईर्ष्या करते हैं। हाँ? इसलिए कहते कि सकले सम्मान करीते सकती देहनाथ जथा जथ तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध हबे हत। यदि हम दूसरों को सम्मान नहीं करेंगे फिर हम ईर्ष्यालु बनकर अपराध करेंगे, इसलिए हरिनाम ठीक से नहीं कर पाएंगे। जो हरिनाम शुद्ध हरिनाम करना ही जीवन का लक्ष्य है और वो नहीं हो पाएगा, इसलिए ईर्षा वो अपने पुत्रों को कहते कि हे पुत्रों आप इसको त्यागो, किसी को भी चर अचर बा कोई भी वस्तु किसी के प्रति ईर्षा भावना को त्यागना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ईर्षा को त्यागेंगे नहीं हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। ये संसार में व्यक्ति दुखी किसलिए दुखी होता है? एक दूसरे के प्रति ईर्षा के कारण। हम प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन ईर्षा ऐसा ही एक वस्तु है जो भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है। हमारे आचार्य लोग ने कहे अन्य सभी वस्तु को भगवान की सेवा में लगा सकते हो, काम कृष्ण कर्मार्पणी क्रोधो अभक्त द्वेषी जने लोभो साधु संगे हरि कथा, ऐसे कहे अन्य सब लगा सकते, लेकिन ये जो है ईर्षा है ये भगवान की सेवा में नहीं लग सकता। ईर्षा के कारण हम बार बार जन्म चक्र में भटकते रहते हैं। दूसरे के प्रति ईर्षा करते तो शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति संसार में क्या खाएगा, चाहे वो बिल गेट्स हो या कोई साधारण को बहुत गरीब लोग। बिल गेट्स कौन जानते? पुरुषों को पता है बिल गेट्स कौन है? लाइफ में डायरेक्टर है ना, क्या कलेक्शन कर रहे हो? बिल गेट को नहीं जानते? कौन है बिल गेट? है दुनिया के सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है अमेरिका, दुनिया के सबसे बड़ा धनी व्यक्ति। अभी आया था यूपी में इसको मिलने के लिए, किसको? यूपी का चीफ मिनिस्टर है ना जोगी, उसको मिलने के लिए आया था। कुछ बिजनेस मामला होगा तो उसको मिलने आया था। तो चाहे वो दुनिया के सबसे बड़ा श्रेष्ठ मैंने पूरा वर्ल्ड में श्रेष्ठ व्यक्ति मैंने धनी व्यक्ति है, आप उसको पहचानते नहीं हो, धन कैसे कलेक्शन कर रहे हो? यदि कहीं कहा जाता है कोई बड़े शहर में है, आज जहां पर बिल गेट्स की लेक्चर है और उसमें टिकट यदि भी 10,000 बा 50,000 का टिकट होगा तो भी लोग जाएंगे अंदर, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जाते हैं उससे सीखने के लिए हाउ टू एक्युमुलेट मनी, कैसे धन कमाना है। तो अच्छा, जो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हो या सबसे बड़ा भिखारी व्यक्ति हो उसको क्या खाना है? रोटी, दो रोटी तो एक पाव दूध थोड़ा सब्जी हो जाए बस। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? और जो समय मिला तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको क्या जरूरत है? नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। आज मैं पदल में जा रहा हूँ भजन कर, बस कोई फर्क नहीं पड़ता, कई साधु है वृंदावन भ्रमण करते हैं, गोस्वामी लोग नहीं करते थे। त्यक्त्वातुर्न अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत् भूत्वाधीन गणेश कौ करुणया कौपी न कंथा आश्रित हो। सब त्याग कर कौपी न कंथा पहनकर वृंदावन के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करते थे। उसी से कितनी अपूर्व आनंद है अनुभव होता था। अभी आप सोचे कि नहीं एसी चाहिए रूम में, हीटर चाहिए, लेकिन प्राचीन काल में देखो जो खेती में काम करने वाले व्यक्ति हैं बहुत परिश्रम करके खेती में आते हैं, कोई नदी के किनारे कोई वृक्ष है उसका नीचे बैठता है, जो ठंडे हवा बहता है वो हवा में जो उसको जो तृप्ति मिलता है, ऐसी रूम में बैठकर उसको तृप्ति मिलेगा नहीं। एक बड़ा हमारा मन की मानसिक एक चेतना है मैं इतनी बड़े व्यक्ति, मेरे रूम में ऐसी नहीं है, क्योंकि उसका रूम में दूसरे के पास में है, मेरे पास क्यों नहीं होगा। ईर्षा, सब समय ईर्षा, दुखी व्यक्ति ईर्षा के कारण दुखी हो जाता है, ये नहीं कि उसका कोई आवश्यकता है ऐसी चीज नहीं, सिर्फ दो रोटी एक पाव दूध और चाय सब्जी के पास खा के वो आराम से भगवान ही भजन कर सकता है, लेकिन क्योंकि दूसरे के पास है मेरे पास नहीं है इसलिए ईर्षा बन के दुखी हो जाता है। एक व्यक्ति अपने गांव में भगवान शंकर जी को बहुत तपस्या किया, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान कहे कि शंकर जी कहे कि देखे तेरा तो पूर्व प्रारब्ध के आधार पर कोई सुख भोगने का हे मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, तेरे भाग्य में कपाल में नहीं लिखा गया तुम सुखी बनोगे, लेकिन फिर भी यदि एक उपाय है तुम सुखी बनो, तुमको धन मिल सकता है एक उपाय में, तुमको जो मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को इसका दोगुना मिलेगा, तुम्हारे जो घटेगा तुम्हारे पड़ोसी का भी दोगुना घटेगा। अब तो कोई उपाय नहीं, बोला ठीक है मेरा भी घटेगा उसका भी दोगुना तो घट जाएगा ना, ठीक है ओके। वरदान को इसलिए स्वीकार कर लिया जो सुना कि उसका वो एक गुना घटेगा तो उसका पड़ोसी का कितना घटेगा, दोगुना घट जाएगा, बोला ठीक। तो वरदान मिला था कि अपने घर का जमीन था, घर नहीं था, खड़ा हो गया जमीन में, कहा कि शंकर जी को ध्यान कर, बोला कि यहां पर एक 5 महला की बहुत सुंदर बिल्डिंग खड़ा हो जाए, महल रहने का लायक सुख है, खड़ा हो गया तुरंत शंकर जी के पास, कहा कि देखा कि देख रहा था लेकिन पास में उसका जो पड़ोस का जमीन था उसमें दो बिल्डिंग खड़ा हो गया। तो बोला कि ठीक है सुख भोगना के लिए संसार के लोग सोचते कि क्या सब सुख का माध्यम क्या है, सुंदर स्त्री और धन होना चाहिए, बिल्डिंग खड़ा हो गया उसमें धन भरा हो गया सब, क्या कि मेरे पास एक सुंदर पत्नी इसी घर से निकाल कर मुझे स्वागत करे, बहुत सुंदर एकदम दिव्य सुंदर अवसर के समान स्त्री निकली, उनको बहुत आरती लेकर स्वागत किया, लेकिन देख रहे थे पड़ोस में दो बिल्डिंग से दो निकाल कर, बड़ा बड़ा ईर्ष्या बनाए, ईर्ष्या ऐसे ही तो फायदा होता है, क्योंकि हम दूसरे के पर दुखे, भक्तिमा ठाकुर इसलिए कहते कि पर सुखे दुखी पर दुखे सुखी है, सदा मिथ्याभाषी ये सब बद्धजीवन के स्वाभाविक हमारे गुण है, कई जन्म जन्म से करके आए हैं इसीलिए तो संसार में भटक रहे। तो ठीक है तो घर में रहा, लेकिन बोला कि सोचा तपस्या क्या मैं और फल भोग रहा बैठे बैठे हो, बोले इसको ही पाठ पढ़ाना पड़ेगा, मेरे जो घटेगा उसका भी घटेगा ना। तो कहा कि ठीक है मेरे बिल्डिंग का दोनों साइड, मैंने बिल्डिंग के सामने एक गाढ़ा बन जाए, बहुत 20 फीट का गाढ़ा बन जाए, बड़ा ड्रेन जैसे बन जाए, बन गया तो उसका बिल्डिंग का दोनों साइड में गाढ़ा बन गया है, इसका एक बना था तो उसका दो बन गया दोनों साइड बिल्डिंग में आगे पीछे। तो बोला कि ठीक है अभी मेरे एक आंख नष्ट हो गया, तो उसका एक आंख नष्ट हो गया पड़ोसी का दोनों आंख चला गया, बेचारा जो उतारने के लिए कोशिश कर रहा था घर से बाहर निकलने के लिए गिर गया 20 फीट गाढ़ा के अंदर, तो अभी इसको बड़ा प्रसन्नता हुआ है, ताली मार के बस अभी तपस्या बिना तपस्या में भोगना अभी मजा आ रहा है। तो संसार में इसे ईर्ष्याळु है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में ईर्ष्या दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना रहता है, इसको हम भगवान की सेवा में ही लगा सकते हैं। प्रकृति में आध्यात्मिक जगत में ये प्रेम ही जो जिसको हम प्रेम कहते हैं, भगवान की सेवा करने की परिपाटी को अधिक से अधिक आगे बढ़ाना, ये जो कंपटीशन है गोपियों के बीच में, इसके ठीक उल्टा प्रतिबिंब के रूप में, ईर्ष्या के रूप में इस भौतिक जगत में आता है। देखता है कि कोई चंद्र वो शायद मुख्य थे, कई गोपियों के बीच में मुख्य दो सखी राधा और चंद्रावली है, ये तो बहन भी है, चंद्रभानु की पुत्री चंद्रावली, वृषभानु की पुत्री राधा। लेकिन यदि कोई चंद्रावली की सखी कोई देखे, चंद्रावली की सखी कोई अच्छे माला बनाकर चंद्रावली बना के दिया और पद्मा ने लाकर पहना दी राधा रानी को, राधा रानी ग्रुप के कोई देखा कि कृष्ण बहुत सुंदर एक माला पहने हुए है, चंद्रावली पहन के उस माला को देख के आ गया, और फिर वो उससे भी कई गुण की अच्छी माला बनाकर ललिता जी लेके जाएगा, फिर उसको उस माला को निकाल देगी, कृष्ण गला से निकालकर अपने माला डालती है, राधा रानी को बना हुआ माला को डाल देती है। बाह्य रूप से हम देखते हैं, सोचते कि ईर्ष्या करते, ईर्ष्या नहीं करते हैं, कृष्ण की सेवा परिपाटी को आगे बढ़ाना, भगवान को सेवा करने की भावना को भावना में वैसे करते हैं, लेकिन उसकी जो उल्टा प्रतिबिंब जो पृथ्वी ये धरा पर आता है भौतिक जगत में, ये किससे परिणत हो जाता है, ईर्ष्या में परिणत हो जाता है। जब तक हम ईर्ष्या को नहीं त्यागेंगे हम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। ईर्ष्या के कारण हम जो कुछ करते हैं ईर्ष्या के लिए, अब कोई शादी एक फैमिली दो फैमिली साइड बाजू बाजू में है, एक व्यक्ति के पास दोनों का थोड़ा टोयोटा कार था, एक कार था टोयोटा कार, एक उसमें से BMW खरीद के ले आया, दूसरे वाला क्या बोलेगा, उसका पत्नी डेली स्कूल लगा के चले गए, हे नहीं उसके पास BMW है हमारे कहा है, हम यही टोयोटा में पढ़ा रहेंगे, नहीं हटा उसको खरीदो, ये स्वाभाविक है, हम दूसरे के सुख देखने से दुखी हो जाते हैं, दूसरे के दुख देखने से सुखी होते, स्वाभाविक। कोई बारिश हो रहा, जोर जोर से बारिश हो गया, पिसलने के लायक से रास्ता हो गया, आप एक साथ में पांच साथ जा रहे हो, तो एक आदमी उसमें पिसल के गिर गया तो क्या इमीडिएट रिएक्शन किया, आपकी बुक से ऑटोमेटिकली हंसी आ जाएगा, अरे भाई गिर गया उसको तो आपको हंसी आएगा, क्योंकि पर दुखे सुखी ये भावना है जनरल है? जो लोग वैष्णव नहीं है इनके चरित्र में ये गुण रखा ही पड़ता है, कोई वैष्णव होता तो उनके गुण अलग है, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना मजात सत्र शांत साधव साधुभूषण साधुओं की भूषण है, इसलिए हमें देखना चाहिए कि हमारा स्थिति कहाँ पर है, हमें साधु बन गए अभी कि और कुछ है, साधु की भेष तो पहने हुए है लेकिन है कहाँ पर उसको देखना चाहिए, हमारे पास में एक गुण सुख है क्या, हम ईर्ष्या से रहित है कि नहीं दूसरे के प्रति है? इससे मुक्त होना इतने आसान नहीं है, बद्ध जीवन की स्थिति में ये बहुत बड़े शत्रु है हमारा, ईर्ष्या को त्यागना है, इसलिए भक्ति ठाकुर कहते कि हमारा जीवन हमको सिखाने के लिए वो तो परम से ठाकुर लेकिन कहते कि हमारा जीवन सदा पापे रत नाही क पुण्य रे परे रे उद्वेग दिया छी जे कत दिया छी जीवे रे क्लेश निज सुख लागी पापे नाही डरी दयाहीन स्वार्थ पर ये बद्ध जीव के हृदय कैसे हैं खुलते हैं आचार्य हैं कैसे हमारे हृदय में हमेशा ही ये है स्वभाव है हमारा बना हुआ कई जन्म जन्मांतर से ऐसी से जो मुक्त हो जाता बस मुक्त ईर्ष्या से रहित हो गया तो इसलिए ऋषभदेव कहते कि हे पुत्रों ईर्ष्या से रहित हो जाना इसको त्याग हो ईर्ष्या को त्यागो क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा की मेरा अधिष्ठान है प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि अन्यांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम सर्वत्र परमात्मा के रूप में है प्रभुपाद जी का तात्पर्य लगते कि गर्भ तो सही और खीर्द को सही विष्णु दोनों ही ब्रह्मांड में रहते हैं और उसके और एक विष्णु की बात क्यों नहीं कहे कारण तो सही विष्णु के बारे में क्यों नहीं कहे कहे ना गर्भ तो सही और खीर्द को सही विष्णु ब्रह्मांड में निवास करते हैं और कारण तो सही विष्णु का क्यों नहीं कहे दोनों विष्णु यहाँ पर है और दो और कारण तो सही विष्णु कहाँ गए क्योंकि वो कारणार्णव सागर में शयन किए हुए महाविष्णु व कारण विष्णु एक ही होते हैं, लेकिन ये दो विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में रहते हैं। कौन? गर्भक्षय विष्णु। वो तो खाली ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं, ब्रह्मांड सृष्टि होने के बाद प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भक्षय विष्णु अपने पसीने के जल से वो ब्रह्मांड को भर के उसी के ऊपर अंदर सज्जा में शयन करते हैं। और उन्हीं के नाभि से कौन निकलता है? ब्रह्मा निकलते हैं, सृष्टि करते हैं। और खिरदक्षय विष्णु प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में किस रूप में रहते हैं? परमात्मा रूप में निवास करते हैं। अंडांतरस्थंग परमाणु चयन सर्वत्र ये निवास करते हैं। एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद आप तो कहते कि चलो परमात्मा सभी के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन भक्त के हृदय में कौन रहता? जो डिवोटी है कृष्ण के उसके हृदय में कौन रहता? परमात्मा रहते कि और कोई रहता? क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मरो वैष्णव पराण। प्रभुपद में उसको देखे हास्य कहे कि प्रकृत में यदि फिर समान इज प्योर डिवोटी है, शुद्ध भक्त है, इसलिए कहते कि साधव हृदय मह्यम साधुना हृदय तो अहम मत अन्य न जानती ना हम तेभ्यो मनागपी। जो मेरे अलावा कुछ नहीं जानता तो उसके हृदय में मैं सदा निवास करता हूं। जो साधु संपूर्ण रूप में भगवानी चरण में समर्पित है, स्थावर जंगम कहीं भी कुछ देख रहा वो अपने इष्ट को ही दर्शन करता, दूसरे कुछ नहीं उसको दर्शन होता है, तो भगवान को ही देखता है। तो ऐसे व्यक्ति की हृदय में गोविंद निवास करते, लेकिन जनरल स्टेटमेंट जो समय सारी जीवन के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं। इसलिए ऋषभ कहते हैं कि मेरी अधिष्ठान सर्वत्र जानते हुए कि मैं सर्वत्र निवास करता हूं, स्थावराणी भूतानी मत अधिष्ठानतया जस्मा भी सम्माननीयानी, इसलिए उनको सम्मान देना, सर्वत्र भगवान को देखना। हम देखते हैं हमारा मंदिर में देखते हैं सब देखते हैं, लेकिन बंदर के अंदर में भगवान है हम नहीं देखे? देखते हैं बंदर आता मारो उसको उड़ाओ जरा आ गया नहीं। जो महाभागवत वैष्णव होते हैं सर्वत्र भगवान को देखते हैं, तो स्थावर जंगम वस्तु को नहीं देखते, किसी में भी है एक बिच्छू के अंदर में भगवान को देखते हैं कि कहीं भी किसी भी स्थल सर्प के अंदर में भगवान है, सांप के अंदर भगवान है, सांप को देखो क्या बुलाओगे प्रणाम करोगे वैष्णव सोचकर? दूसरा देव कहते कि सभी को प्रणाम करने का सब भक्त हैं सकल ये सम्मान है, आप क्या करोगे? एक कुंभमेला में एक साधु ने बैठकर बिच्छू को बीजन में एक बिच्छू को भाज के जा रहा है पानी में बह जा रहा था, उसको उठाया, पहले ही पानी में बह जा रहा उसको उठाया तो बिच्छू का धर्म क्या करेगा? काटा उसको, काटा लेकिन फिर बार बार करता तो छल से फिर चले जाता, फिर उसको उठाता फिर काटता, फिर देख रहा था कि पागल है तू, बिच्छू भाग रहा है तो पानी में डूब रहा है, जाने तो इसको बाहर तू इसको क्यों उठाता बार बार तुझे काटता है? बोला ये बिच्छू यदि उसका धर्म नहीं छोड़ेगा मैं क्यों अपना धर्म छोड़े है? बेचारा प्राणी डूब रहा है तो इसको उठाना हमारा धर्म है। बद्ध जीव को संसार से उद्धार करने का धर्म किसका है? साधु का है। इसलिए सर्वत्र यदि वो प्रहलाद महाराज अपने प्रार्थना में कहते कि सांप और बिच्छू आदि प्राणियों को मरते हुए देखकर साधु लोग भी हर्षित होते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रत्येक जीवात्मा के अंदर में भगवान को दर्शन करके उनकी हिताकांक्षी होना चाहिए, उनके हित चिंतन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी महान भक्त थे वासुदेव दत्त, उन्होंने किसके लिए मांगा था? किसकी पाप लेना चाहते थे? केवल मनुष्यों के लिए नहीं, उन्होंने कहा कि 84 लाख जोनि में जितनी भी प्राणी जीव जगत सृष्टि है ये सभी की कर्म फल मुझे दे दीजिए, सभी के पाप यही जन्म जन्मांतर के जो पाप करके आए जिसके लिए जन्म चक्र में भटक रहे हैं ये सभी के पाप मुझे दीजिए और मैं समस्त जीवों के पाप के लिए आप प्रलय तक भी यदि मुझे नरक में रहना पड़े मैं नरक में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन हे प्रभु ये समस्त जीवों को जन्म मुक्ति संसार से मुक्त कर दीजिए। ये वैष्णव के चिंतन है। इसे कहते ईर्षा रहित, किससे ईर्षा नहीं है, ईर्षा नहीं है, हैं? सर्वजीवे दया, वैष्णव का अर्थ, वैष्णव का धर्म क्या है, सनातन को सम को शिक्षा देते हुए महाप्रभु कहते कि नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन इहा हैते धर्मार नहीं सनातन, इससे बड़ा धर्म नहीं है। इन वैष्णव कौन है, कौन वैष्णव है, हैं? जो महामंत्र जप करता है वही वैष्णव है। मम अंश जीवो लोके जीवो भूत, सारे जीवात्मा मेरे अंश है, हैं? इसलिए वैष्णव जो महाभागवत वैष्णव होते हैं, जीव मात्र सभी को वैष्णव देखते हैं, वो नहीं कि हरिओं के हरि कृष्ण जो मंत्र जप रहा था उसी को वैष्णव मानेंगे, नहीं, ऐसा ही भगवान का ही अंश है ना, मम अंश जीवो लोके जीवो भूत सनातना। इसलिए महाभारत वैष्णव सभी को वैष्णव में देखता है, सोचता है कि मैं वैष्णव नहीं हूं, वो केवल कहता है कि मैं मेरे को छोड़ के और सब वैष्णव है, कि मैं भगवान की भजन नहीं कर पा रहा हूं, ये सभी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि वो सोचता है कि जो कुछ संसार में होता है उन्हीं की इच्छा से होता है, किसकी इच्छा, भगवान की इच्छा से। इसलिए उत्तम वैष्णव की दृष्टि में प्रत्येक जीव को वैष्णव मानता है, केहू माने केहू ना माने, सभी तार दास, कोई मानता है कोई नहीं मानता, लेकिन अल्टीमेटली सभी उन्हीं की दास है, कृष्ण के दास है, क्योंकि उन्हीं का ही अंश है। जेहू ना माने अपना गुण से ही जाए, जो नहीं मानता भगवान को तो वो अपना गुण में है, वो अपना ही दोष से कष्ट भोगता है, लेकिन वैष्णव की दृष्टि में प्रत्येक जीवात्मा भगवान का ही अंश होने के कारण कृष्ण नित्य दास, कृष्ण के नित्य दास है, इसलिए वो किसी को ईर्ष्या नहीं करता है, सभी को भगवान का ही अंश समझते हुए सभी का कल्याण की चिंतन करता है, जो कहते वैष्णव चाहे तो। इसलिए हमें प्राणी मात्र किसी को ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, हैं? ये वृंदावन के जो बंदर है कुत्ते हैं कोई साधारण नहीं, विशेष रूप में ब्रज में रहते हो, भक्ति सुंदर में क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ के पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली बंदर भी कोई साधारण नहीं है। अरे वृक्ष के रूप में तो शामकुंड के किनारे पांडव लोग थे, वृक्ष के रूप में कौन निवास करते थे, पांच पांडव युधिष्ठिर महाराज आदि, हैं? जो रघुनाथ दास को समय श्यामकुंड को उद्धार करना चाहते थे तो पूरा चतुष्कोण बनाना चाहते थे, वो तो सपने में आए युधिष्ठिर महाराज, हैं? हम पांच भाई पांच वृक्ष के रूप में भजन कर रहे हैं, इधर काटना नहीं हमको, हैं? अब कौन जानते हो कौन क्या है इधर, ये तमाड़ा वृक्ष कौन है, ये इतने वृक्ष ब्रज में कौन है, ब्रज में महान मुनि ऋषि लोक में भी वृक्ष के रूप में रहते हैं, यहाँ निवास करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं बंदर कुत्ता बंदर कुत्ते विशेष रूप में बंदर है कुत्ते, ये सब फलडाउन सन्यासी है पिछले जन्म के, बैरागी जीवन बिताने के लिए वृंदावन में आ गए थे, बैरागी भेष बाबा जी भेष तो ले लिया, हरे कृष्ण तो करते रहा, लेकिन लस्टी डिजायर को त्याग नहीं सका, हैं? फिर भी ऑपोजिट सेक्स में इसको आसक्त रहा, तो इसलिए बंदर बन के एक लाइफ टाइम इसका प्रायश्चित कर रहा है, लेकिन इनकी गारंटी है ये भगवत धाम जाएंगे, हमारा गारंटी है कि नहीं, डाउट है, लेकिन उनके कि वो जाएंगे भगवत धाम, हम यदि कुछ अपराध करेंगे वैष्णव अपराध करेंगे और कुछ करेंगे, अब वृंदावन में रहते हुए कोई गुड़गांव में जाके हॉस्पिटल में शरीर त्याग अपोलो में शरीर गया, फिर वहां से जमदूत बांध के लेके जाएगा, हैं? तो इसलिए जानना चाहिए कि ये ब्रजभूमि में जब रहते हैं ब्रज में रहने चाहिए, यहाँ के पशु पक्षियों के प्रति प्रेम होना चाहिए, यहाँ के प्रत्येक प्राणी के प्रति, हैं? क्यों सभी के हृदय में भगवान निवास करते हैं, प्रत्येक जीवात्मा प्रत्येक जीवात्मा को भगवान के सृष्टि जानते हुए उनको प्रेम करना सीखना चाहिए, हैं? उनको सहायता करना चाहिए। आप देखोगे प्रकृति में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में जो परमात्मा को दर्शन करता है, भगवान को दर्शन करता है, वो व्यक्ति उसकी मंदिर में भी प्रेम को उत्पन्न करा सकता है, हैं? चैतन्य महाप्रभु ये सबको नचाते थे, किसको, शेर को, हाँ, कि बाघ को, कि हाथी सर्प बंदर हिरण सब नृत्य हरे कृष्ण मंत्र गा के नृत्य करते थे, कि महाप्रभु के प्रभाव से सभी अपने का स्थिति को जानते थे, हम कौन है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हैं? लेकिन इस भावना को जीवात्मा के अंदर में उद्रेक करने के लिए हमारा हमारे अंदर में भी इसी प्रकार क्वालिफिकेशन होना चाहिए। महाप्रभु की कई केवल महाप्रभु ऐसे नहीं कर कई पार्षद महाप्रभु के थे, यो भी ऐसे शेर को भी जाएगी थप्पड़ बोला थप्पड़ लगाई बोला बोला हरे कृष्ण और शेर भी बोलता हरे कृष्ण है, लेकिन हमारे पास में इसे प्रेम नहीं है। प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेम की भावना हमारे मन में नहीं है। जो महाभागवत वैष्णव होते शिल प्रभुपाद जी जैसे उनके अपने प्रभुपाद जी कभी भी रूम में ये लगाना नहीं पसंद करते थे क्या केमिकल जो लगाते नहीं क्या ऑल आउट बोलते नहीं ये हमारा अधिकार नहीं है। इनमें से जो बुद्धू आता है तो उससे क्या होता है मच्छर एक प्राणी होने पर भी मूर्छित होकर गिर जाता है उसको कष्ट बहुत कष्ट होता है मरता तो नहीं बहुत कष्ट होता है। तो हमको ये अधिकार नहीं है दूसरे को कष्ट देने का है? आपको चाहिए ठीक है मच्छर से बचना तो आप मच्छर डाली टांग के सो लेकिन ये नहीं लगाना। प्रभुपाद जी के एक बार मच्छर डाली उनके सर्वेंट टांग दी सुतकृति प्रभु मच्छर टांग दिए प्रभुपाद जी गए अंदर में सोने के लिए लेकिन जो है जो अंदर में कीड़ा था क्या है जंपिंग करने वाले होता ना जंप करते एक कीड़ा था ऊपर इसको देखकर उनको सर्वेंट पर गुस्सा हो गया क्या इसका अंदर आ गया सोचते अभी पकड़ के इसको यही समाप्त कर दूंगा अंदर घुस गया। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको रुके बड़े प्रेम से प्रभुपाद उसको देख रहे थे कीड़े को बहुत बहुत आसान से हाथ ऐसे बढ़ाए और कीड़ा प्रभुपाद जी हाथ में आ गया। प्रभुपाद इसको स्वयं लेकर बाहर आए मच्छर का मच्छरदान के अंदर से आकर पूरे गेस्ट हाउस गेट तक गए वहां जाकर उसकी भाई कुछ लता के ऊपर ऐसे पेड़ के ऊपर छोड़ दिए इसको छोड़ के फिर वापस आए फिर आके सोए हैं। इस साधु के अंदर में जीव मात्र सभी के प्रति करुणा की भावना होता है। हम उच्च संकीर्तन किस लिए करते इसी के लिए। तो हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने पूछे हरिदास ये स्थावर जंगमा ये प्राणी ये सब कैसे उद्धार होंगे जबन मिलच्छे इनकी उद्धार कैसे होगा जो भक्त तो हरिनाम कीर्तन करके उद्धार हुई ये तो हरिदास ठाकुर के इसीलिए हम क्या करना चाहिए जोर जोर से नवर कीर्तन करना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ये कीर्तन करने से शब्द ध्वनि ये पशु पक्षी कीड़े मकड़ों के कर्ण में प्रवेश करेगा इनका भी उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए हमारे मन में ईर्षा से रहित सर्वे कहते हैं ईर्षा के रहित होना। प्रभुपाद जी और एक कोट करते श्लोक विद्या अभिनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीहस्तिनी सुनी चाहिए वो सपाक पंडिता समदर्शिन है विद्या अभिनय संपन्न ब्राह्मण सभी को समान दृष्टि में देखते ब्राह्मण को कुत्ता को चांडाल को कुत्ता भक्खी हाथी को सभी समान दृष्टि में देखता है। इसका अर्थ नहीं कि सभी को लाइन में बैठा कर फिस्ट खिलाएगा। कल फिस्ट बना था जैसे फिस्ट बनेगी सबको हाथी के सामने और कुत्ता के सामने चांडाल के सामने सबको फिस्ट खिलाया गया एक लाइन में बैठा कर नहीं। ये सर्वत्र किसको देखता है भगवान को देखता है प्रत्येक हृदय में परमात्मा को दर्शन करता है। इसलिए जीव मात्रे भगवान के अधिष्ठान जानते हुए प्रत्येक प्राणी को हम सम्मान देना चाहिए अमानिना मान देना कीर्तनिया सताहरी। इसलिए जब तक हम ईर्षा से नहीं रहित नहीं होंगे हम कभी भगवान की भक्ति शुद्ध भाव से नहीं कर सकते। यह एक शत्रु है जिससे हमको शुद्ध भक्ति करने में सदा बाधा डालता है। ईर्षा करना यह हमारा स्वभाव बना हुआ है। ईर्षा के कारण भौतिक जगत में घूम रहे हैं कि हम भी सोचते कि हम भी भोगता है कृष्ण अकेला क्यों भोगता होगा कृष्ण क्यों अकेला कृष्ण का 16,800 मैंने इतने रानी रहेंगे लाखों गोपी रहेंगे मेरा क्यों दोस्त सर मेरा भी कुछ होना चाहिए है? बोलने वाला अभी जेल में है। अभी दो तीन साल पहले हम बताए पंजाब में स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट दिया था सिरसा में एक व्यक्ति क्या नाम राम रहीम स्टेटमेंट दिया है कि कृष्ण क्या है कृष्ण भगवान है कृष्ण का यदि 16,108 रानी रहेंगे वो लाखों गोपी के साथ में नृत्य करेगा मेरे को भी मैं क्यों नृत्य नहीं कर सकता है? मैं भी नृत्य किया था दो कुछ 10-15 के बीच में क्या हो गया मेरे पास भी 20-25 होना चाहिए। अब इसका परिणाम क्या कृष्ण को इमिटेशन करने में परिणाम में क्या होता है उसको समझ में हो रहा है समझ में आ रहा है। वो स्वयं को स्वयं भगवान को मानते हैं कहते हम भगवान। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ऐसे नहीं कि इसका अर्थ नहीं सर्वत्र सभी भगवान है सभी भगवान नहीं है भगवान एक है और सभी उनके दास है आज यदि आप भगवान बनने के लिए कोशिश करोगे फिर उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा हैं। तो भी इसलिए कभी हम ईर्ष्या के कारण हम भी भगवान बनना चाहते हैं, इसी कारण से तो यहां पर है ईर्ष्या के कारण। इसलिए इसी को त्यागना जरूरी है शुद्ध भक्ति करने के लिए, ईर्ष्या को त्यागना। इसको त्यागने का क्या उपाय है, कैसे हम ईर्ष्या को त्याग सकते हैं, कैसे त्यागेंगे ईर्ष्या को? तादेर चरणों से भी भक्त सने बास, जनमे जनमे हय यही अभिलाष। हमारा यदि अभिलाष को हमारा जो इच्छा को यदि परिवर्तन करेंगे है? हमारा जीवन का लक्ष्य को यदि हम बदलेंगे, हमारा लक्ष्य क्या है अभी, हमारा लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य? पुरुषोत्तम प्रभु कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम कैसे मिलेंगे? ईर्ष्या को त्यागना कि नहीं? आपको ईर्ष्या है किसके ऊपर? नहीं, आपके डिपार्टमेंट में अभी जन्माष्टमी में कोई ज्यादा कलेक्शन करके ले आया, आपका आपका एम था कि मैं सबसे बड़ा, मेरे रिकॉर्ड रहना चाहिए, तो आपसे कोई ज्यादा प्रतिवर्धन करके लाया तो आपका क्या होगा माइंड? आप खुश हो जाते कि उसे खुश होते कि ना, उसके देखने से मुख घुमा के चले जाते हो, हैं? खुश होता? हम खुद जान सकते हैं हम ईर्ष्या से मुक्त है कि नहीं है, खुद को पता लगेगा। पता चलता हम यदि किसी व्यक्ति हमसे कुछ अच्छा काम करता उसको देख के हमारे मन में हम हर्षित हो रहे कि नहीं, देख के और घूम जाते पूरा तुरंत है ना, ईर्ष्या होता है। इधर कोई अच्छे भक्त सामने आ रहा है कि जो कोई सन्य जा रहा है सामने आ गया, बोला अरे क्या कहां से आ गया सामने, वही प्रणाम करना पड़ेगा, वो घूम के घूम के चले सीधे, अरे नहीं तो अनजाने यदि कोई आगे मिल गया उसका साथ बात करने शुरू कर दिया, जानता नहीं कुछ है। ये सब ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म भाव से हमारे मन में रहता ही है। इतने आसान नहीं इसको त्यागना। पर दुखे सुखी, पर सुखे दुखी है, लेकिन इसी को त्याग देने से ही, ईर्ष्या की भावना को त्यागने से ही फिर हम प्रेम कर सकते हैं। इसी काम आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे कही काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम, उसको प्रेम कहते हैं। इसलिए सभी की वेलविशर बनना, सभी की हिताकांक्षी बनना, प्राणी मात्र सभी के हित चिंतन करना है। इसीलिए प्रभुपाद जी केवल इसी स्तर के वैष्णव जो उन्होंने कहा था, लिखते थे प्रत्येक पत्र के अंत में क्या लिखते थे, योर एवर वेलविशर, योर एवर वेलविशर, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। आप ऐसे कह सकते हमारे किसकी हिम्मत है सिंपल में, योर एवर वेलविशर ना कोई स्वीकार करेगा? आप लिख दो, आप लिख भी दोगे पत्र में, कोई स्वीकार करेगा इसको? कोई नहीं स्वीकार करेगा, जानते कि ये व्यक्ति कैसा है, और लिख दिया योर एवर वेलविशर, वो हंसी उड़ा दे, बोले ये क्या है। प्रभुपाद जी लिखते थे प्रत्येक पत्र के प्रथमांत में योर एवर वेलविशर, प्रत्येक प्राणी के एवर वेलविशर केवल भगवान स्वयं हो सकते, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञानत्वमान शांति इच्छति, और उनके शुद्ध भक्त भी वो भी सभी के हित चिंतन करते हैं। जैसे वासुदेव दत्त जी कहे कि सारे जीवों के कर्म मैं लेना चाहता हूं, सभी की कल्याण की चिंतन करना जो व्यक्ति, वो ईर्ष्यालु नहीं हो सकता। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं ईर्ष्या से रहित होते हैं, सारे जगत की कल्याण कामना करते हैं। इसलिए भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र को वही उपदेश दे रहे हैं, हे पुत्रों ईर्ष्या से रहित हो, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना है। प्रत्येक जीवों में भगवान के अधिष्ठान को देखते हुए, भगवान को दर्शन करते हुए सभी जीवों के हित चिंतन करना हमारे कर्तव्य है। जीवे दया, इसलिए प्रभुपाद ने प्रभुपाद जी प्रह्लाद महाराज के मार्ग को अनुसरण करते हुए कहते थे कि ये रास्कल्स नॉनसेंस डोंट नो एनीथिंग, डांटते थे करुणा की भावना के से, ये ईर्ष्या से नहीं बोलते थे। हम यदि किसको डांटते तो ईर्ष्या के कारण। प्रह्लाद महाराज कहते कि हे प्रभु मैं आपके साथ में अकेले नहीं जाना चाहता हूं। नृसिंहदेव कहते कि मैं ये मूर्खों को धूर्तों को भी लेके जाना चाहता हूं, मैं ये जो मूर्ख धूर्त क्या करते जानते नहीं है, इनको भी लेके साथ में जाना चाहता हूं आपके पास। उसी मार्ग को प्रभुपाद जी यूज कर, प्रह्लाद महाराज भी ऐसे ही वर्ड यूज करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ना यू नन, ये नॉनसेंस रास्कल डोंट नो एनीथिंग व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, तुम जीवन का लक्ष्य क्या तुम पता नहीं है। तो इसलिए हम ईर्ष्या से रहित होकर भगवान की भक्ति करें, भक्ति नहीं तो नहीं हो सकता। ईर्ष्या जब तक हमारे पास में है दूसरे की, दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखकर टांग खींचने का प्रवृत्ति जब तक रहता है तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते है? जब तक इसको नहीं त्यागेंगे तो भक्ति कैसे आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ सकते है? समय हो चुका है, कोई किसके प्रश्न है? हाँ दोनों एक साथ एक ही स्तर के हो गए तो होगा है? दोनों यदि एक स्तर में है तो होगा, लेकिन एक यदि हायर स्तर में है, है? तो कैसे होगा। एक हाल में वैष्णव ने थे, महान वैष्णव थे, गंगा में जाते थे स्नान करने के लिए, गंगा के स्नान करके जो आते थे, एक मुस्लिम था वो अपने घर में था, महात्मा वो जानबूझ कर थूकता था उसका ऊपर, थूकने से फिर वापस जाता था वो कहा स्नान करके, वो क्रोधित नहीं होते थे, वो मुस्कुराते थे फिर जाके स्नान करके आते थे। ऐसे ही 108 बार वो गए स्नान किए और आए 108 उसके ऊपर थूका, तो उसको परिवर्तन हो गया। वो मुस्लिम जो बोला गया, अरे कैसा व्यक्ति है, कुछ बोलता भी नहीं, गाली भी नहीं देता, कुछ दिखता नहीं, तो उसका हृदय परिवर्तन, ऊपर आके अपने आप आके प्रणाम किया, बोले महात्मा 108 बार आपका आप स्नान कराए, स्नान करके आए हो, आपके ऊपर थूकते रहा, लेकिन मैं ऐसे साधु को भी देखा नहीं, किसको आपको मैंने कोई क्रोध भी नहीं आया, आप तो कुछ बोलते नहीं पूरे, और मुस्कुराते हुए जाते फिर स्नान करके आते, फिर आप मैं थूकता हूँ, फिर जाते फिर आते, क्या रहस्य है। साधु ने कहा देखो तुम तो मेरी बहुत बड़े महिताकांक्षी हो, क्योंकि तुम तो मेरे को आज 108 बार गंगा स्नान की फल मिला, तुम जब नहीं थूकते तो मैं कहाँ स्नान करता है। साधु के विचार ऐसे होता है, ये किसी भी चीज में बुराई को नहीं देखते हैं, जानते कि संसार में जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है, और इसमें कुछ भगवान के कुछ उद्देश्य होगा, इसलिए वो कोई थप्पड़ लगा देता तो उसके गुस्सा नहीं होते हैं साधु की है। प्रभुपाद जी को एक कॉलेज में प्रीचिंग करते थे तो हंसी उड़ाने लगे, क्योंकि उन्होंने वर्णाश्रम धर्म का एक्सप्लेन करते थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, सोसाइटी में चार प्रकार के लोगों को जरूरत है, ब्राह्मण फर्स्ट क्लास, क्षत्रिय सेकंड, ऐसे बोलते थे, तो कॉलेज स्टूडेंट हंसी उड़ा रहे थे खड़ा होकर, तो स्वामी जी यू फर्स्ट क्लास, वी आर फोर्थ क्लास, ये स्वामी जी वही फोर्थ क्लास, यू फर्स्ट क्लास, ऐसे बार बार कहेंगे मजाक हंसी उड़ा रहे थे, पूरे क्लास हंसते थे, पर वैसे कुछ बोले नहीं, सहन करते थे, तो उनके टीचर ने उनको बन गए लेक्चर बन गए, साइलेंट थे वहाँ। प्रभुपाद ने कहे कि एक्चुअली आई एम नॉट इवन क्वालिफाइड टू बिकम फोर्थ क्लास, आई एम फिफ्थ क्लास, आई एम द सर्वेंट ऑफ दिस फोर्थ क्लास, फोर्थ क्लास ऑफ पीपल। सब चुप हो गए, तो ऐसे ह्यूमिलिटी होना चाहिए, तो ह्यूमिलिटी नहीं, आप क्रोध हो जाए, कोई कुछ कर दिया, मैंने बोल दिया, जानता नहीं मैं कैसे हूँ, तब तक हमारे मन में ईर्ष्या की भावना है, जानना चाहिए, ऐसे जो स्वभाव हमारा बना हुआ है, हमें आप ईर्ष्या को नहीं त्यागे हैं, जब तक सम्मान सबको देना नहीं सीखे कहाँ से। वैष्णव सभी को, रघुनाथ दास को स्वामी राधाकुंड में रहते थे, कहीं कुत्ता आता था भी प्रणाम करते, बिल्ली आता था प्रणाम करते थे, कोई भी आता था ब्रजवासी समझ कर उसको प्रणाम करते थे, उस बात को प्रभुपाद जी लिखे तात्पर्य में, सकल सम्मान करी ते सकती देवनाथ यथाथ है, नहीं तो हम सुप्रीम सोचेंगे ना हम ब्राह्मण, इसीलिए तो ऋषभ देव कहते कि आप लोग ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण का ग्लोरिफिकेशन पिछले वर्ष में क्या गया, तो इसलिए कहते कि तुम ब्राह्मण होने पर भी दूसरे जीवन के प्रति हैं छोटा नहीं समझना, सबको, सभी के हृदय में भगवान निवास करते, इसलिए सभी को सम्मान करना, नहीं तो तुम सोचोगे मैं तो ब्राह्मण हूं है, अहंकार आएगा फिर, ब्राह्मण हूं सब नीचे वर्ण के लोग मुझे प्रणाम करना चाहिए, मुझे सब सम्मान करना चाहिए, मैं क्यों किसको सम्मान करूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, फिर अहंग भाव आएगा, इसलिए ऋषभदेव ने कहते कि ब्राह्मण होने पर भी सब प्रत्येक जीवन की जीवन में भगवान की अधिष्ठान है, मैं सब सर्वत्र निवास करता हूँ परमात्मा रूप में, इसलिए प्रत्येक जीवन में मेरे अधिष्ठान जानते हुए सभी को सम्मान करना सीखना चाहिए सर्वत्र, वो जीवों को, शरीर को, बाह्य आवरण को मत देखो, आत्मा को देखो, प्रणाम करो, प्रत्येक जीवात्मा को भगवान के अंश है। है। तो इस प्रकार जब तक व्यक्ति उत्तम अधिकारी के स्तर है, लेकिन ऋषभ देव कह रहे हैं हमको लक्ष्य है उसी पहुंचना है, एक दिन हम भी उसी स्तर में पहुंचेंगे। हैं, योमान पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मेन प्रणश्यति। भगवान ने छठा अध्याय के 30 नंबर श्लोक में कहते हैं ये उत्तम वैष्णव का लक्षण है, जो सर्वत्र मुझे देखता है सर और मुझे मेरे में सब कुछ देखता है, मुझे सब सर्वत्र देखता है, ऐसे व्यक्ति कभी मेरे दृष्टि से अगोचर नहीं होता, वा मैं कभी भी उसकी दृष्टि से अगोचर नहीं होता हूं। इसे उस स्तर में आना है। ओके, लेकिन अब देखें हम तो कहां पर पड़े हुए, फिर आस्ते आस्ते इसको देखना चाहिए कहां पहुंचना है, अभी है कहां पर, हमको कहां पहुंचना है, जो सीरियसली हम इनको चिंतन करेंगे आस्ते 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 भक्ति में बढ़ने का संभावना रहता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री